समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिलों की ओर ले जाते हैं।
लिए सपने निगाहों में, चला हूं तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूं मैं, जिंदगी आ रहा हूं मैं।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे लेकर। मैं हूं मनोज और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
नमस्कार मनोज, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। यस, हियर वी आर वंस अगेन विद आवर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू टिल 8 o'clock, राइट मनोज?
जी।
So today is 5th of January and today is Monday. So a very happy Monday to all of you. This is the first Monday of 2026.
जी, नए साल का।
जी। So let's begin our program with the news headlines, shall we?
जी। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा धान उत्पादक देश बनने का गौरव हासिल किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में ये घोषणा की।
चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया, हम नंबर 1 बन गए। इस साल हमारा उत्पादन 150.18 मिलियन टन और चीन का 145.28 मिलियन टन। ये चीन को पीछे छोड़ना एक असाधारण उपलब्धि है। हमारी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके हमने अन्न के भंडार भर दिए हैं।
श्री चौहान ने कहा कि अधिक उपज वाली फसलों के विकास में देश को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ये नई प्रजातियां जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचे। कृषि मंत्री ने कहा कि इनसे किसानों को अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता की फसल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देने को कहा। श्री चौहान ने कहा कि अधिक उपज वाली और जलवायु अनुकूल बीजों की मदद से देश कृषि क्रांति के दौर में पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की समन्वित परियोजनाओं, राज्य और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों तथा निजी बीज कंपनियों के सामूहिक प्रयासों से संभव हुई है।
The Commerce Ministry has said that India's traditional medicine system, Ayush, has received formal recognition in bilateral trade agreements with Oman and New Zealand. Both the agreements, which were finalized in December 2025, have dedicated annexures on health-related services and traditional medicine. Exports of Ayush and herbal products have registered a growth of 6.11%, increasing from $649.2 million in 2023-24 to $688.89 million in 2024-25.
सरकार ने उस वीडियो को फर्जी बताया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना, मोबाइल फोन, दोपहिया और चार पहिया वाहन जैसी वस्तुएं मुफ्त देने की घोषणा की है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई के अनुसार प्रधानमंत्री ने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की है। कार्यालय ने बताया कि ये वीडियो AI से बनाया गया है। सरकार ने लोगों से ऐसी किसी भी गलत सूचना पर विश्वास न करने और सतर्क रहने की सलाह दी है।
Indian Coast Guard's first indigenously designed and built pollution control vessel, Samudra Pratap, will be commissioned by Defence Minister Rajnath Singh in Goa today. The 114.5-metre vessel has over 60% of indigenous content. The 4,200-ton vessel boasts a speed of more than 22 knots and an endurance of 6,000 nautical miles. The vessel will serve as a critical platform for enforcing marine pollution control regulations. I beg your pardon, marine pollution control regulations, maritime law enforcement, search and rescue operations, and safeguarding India's exclusive economic zone.
खेलो इंडिया बीच गेम्स आज से दीव के समुद्री तट घोगला पर शुरू हो रहे हैं। इसका आयोजन केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर रहे हैं। प्रतियोगिता के 8 खेलों में 2100 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। ये खेल आज से 10 जनवरी तक भारतीय खेल प्राधिकरण और राष्ट्रीय खेल संघों की देखरेख में आयोजित किए जाएंगे। समुद्र तटीय फुटबॉल, वॉलीबॉल, सिपका टकरा, कबड्डी, पेंचक सिलाट और ओपन वाटर स्विमिंग 6 पदक वाले खेल हैं, जबकि मलखंब और रस्साकशी गैर पदक स्पर्धाएं होंगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि खेलो इंडिया बीच गेम्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
Rajasthan will host a regional AI Impact Conference 2026 in Jaipur tomorrow. Minister of Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav and Minister of State for Electronics and Information Technology Jitin Prasad will attend the conference. The conference being held in collaboration with Rajasthan DigiFest and TIE Global Summit 2026 is part of a series of engagements leading to the India AI Impact Summit 2026 to be held in February this year. The Ministry of Electronics and Information Technology said that the conference will serve as a key regional platform to explore how artificial intelligence, that is AI, can drive governance reform, economic growth, innovation and inclusive development.
अब रुक करते हैं महानगरों के समाचारों का। पहले दिल्ली की खबर। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र 8 जनवरी तक चलेगा। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे से दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण के साथ होगी। भाषण की समाप्ति के बाद उनके अभिभाषण की प्रति सदन पटल पर हिंदी और अंग्रेजी में रखी जाएगी। सत्र के दौरान प्रदूषण, पर्यावरण, शीश महल और जल बोर्ड से संबंधित कैग की रिपोर्ट सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा परिसर का निरीक्षण किया और प्रशासनिक, तकनीकी तथा डिजिटल व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। श्री गुप्ता ने कहा कि सत्र के दौरान सदन की गरिमा बनाए रखते हुए कार्यवाही के सुचारू संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी सत्र में विधायक नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से आईपैड का उपयोग करेंगे, जिससे कार्यवाही अधिक पारदर्शी, दक्ष और पेपरलेस होगी। साथ ही श्री गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने का निर्देश दिया है, ताकि सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी या लॉजिस्टिक बाधा उत्पन्न न हो। दिल्ली की एक और खबर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने मरीजों और उनके परिजनों के लिए रात्रि आश्रय स्थल शुरू किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहयोग से आयोजित इस स्थल का उद्देश्य बाह्य रोगियों के लिए मुफ्त भोजन, कंबल और शौचालयों की सुविधा प्रदान करना है। साथ ही इस पहल के माध्यम से भीड़ भाड़ और रात भर लगने वाली लंबी कतारों की समस्या का समाधान करना है। विश्राम सदन सुविधा के बारे में बात करते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने एम्स आने वाले सभी मरीजों को बिना रुकावट सेवाओं के लिए पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर आने का आग्रह किया।
And let's talk about Chennai. The Tamil Nadu Pollution Control Board will track pollution across all the 15 zones in the city. It will finalize the monitoring sites and launch awareness drives ahead of the festival, which falls next week. At all locations, air quality index will be measured through manual sampling, with staff stationed at each site to replace filters every hour. The deputy director of the board, Shankar Subramaniam, said that monitoring will continue for several days before and after bhogi and on the day of the festival.
Ab Maharashtra Mumbai ki khabar. मुंबई मेट्रो ने भीड़ प्रबंधन के लिए मेट्रो लाइन 3 एक्वा लाइन पर दैनिक सेवाओं में वृद्धि की है। आरए जेवीएलआर कफ परेड मार्ग पर सेवाएं सुबह 5:55 से शुरू होंगी। सप्ताह के दिनों में ट्रिप की संख्या बढ़कर 292, शनिवार को 236 हो जाएंगी, जबकि रविवार को सेवाएं 198 ही रहेंगी। महाराष्ट्र मुंबई की एक और खबर। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और एमएनएस नेता राज ठाकरे ने आगामी बीएमसी चुनावों के लिए शब्द ठाकरेचा नामक एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। ये कार्यक्रम लगभग 20 वर्ष के बाद राज ठाकरे की शिवसेना भवन में वापसी का प्रतीक है, जो इसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है।
And moving towards Hyderabad, the Hyderabad Metropolitan Water Supply and Sewerage Board, that is HMWSSB, has begun using robotic technology to prevent contaminated water supply. The HMWSSB Managing Director K. Ashok Reddy said that the Water Board has already introduced a pollution identification machine using robotic technology to detect contaminated water and leaks. He explained after a review meeting with officials that the system, which is also referred to as the pipe inspection camera system, will quickly identify and address issues linked to contaminated water supply and its leakages. He further said that the Water Board has prepared a special action plan aimed at turning the city into a pollution-free water zone.
अब कोलकाता का रुख करते हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में विकेंद्रीकृत सुनवाई केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, ताकि दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए मतदाता सूची संशोधन आसान हो सके। ये निर्णय राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ साझा किया गया। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, नदिया, हावड़ा, पश्चिम बर्धमान और उत्तर 24 परगना सहित 12 जिलों में कुल 160 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दार्जिलिंग में सबसे अधिक 39, उसके बाद अलीपुरद्वार में 38 केंद्र होंगे। ये केंद्र मतदाताओं को लंबी यात्रा और परिवहन संबंधी समस्याओं का सामना किए बिना मतदाता सूचियों के गहन संशोधन से संबंधित सुनवाई में भाग लेने में मदद करेंगे, जिससे पहुंच और भागीदारी में सुधार होगा।
And towards Bengaluru, if we move, the Karnataka Medical Education and Skill Development Minister, Dr. Sharan Prakash R. Patil, announced mandatory term insurance for all doctors, officers and staff under his department. This move aims to provide social security and comes after IAS officer Mahantesh Bilagi's death in a road accident last month. Due to the failure to update his service status after promotion, his family received about Rs. 50 lakh less in insurance. The minister has now directed all employees to update their insurance and pay premiums according to their current salary and position. We have some more news from Bengaluru itself. Union Minister of State for Railways and Jal Shakti, V. Somana, laid the foundation stone for a road over bridge at Hagari Bommanihalli between Gunda Road and Kotaru. The project, costing over Rs. 38 crores, will be built by the railways and will eliminate level crossing number 35. The minister said Karnataka is seeing steady railway infrastructure growth and added that all level crossings in the state will be replaced with the road over bridges or ROBs. He also said that 12,900 crore rupees has been approved for railway projects in the Kalyan Karnataka region. So these were the metro updates.
अब महानगरों दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम का हाल जानते हैं। दिल्ली में आज हल्का कोहरा छाए रहने का अनुमान है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और धुंध छाई रहेगी। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में सुबह हल्की धुंध रहेगी और बाद में मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं तन्वी से।
Absolutely. So Chennai and Hyderabad both had fog or mist in the morning and will have partly cloudy sky later. If we talk about the temperature for Chennai, the minimum temperature will be around 22 degrees and maximum will be around 30 degrees. And for Hyderabad, the temperature will hover somewhere between a minimum of 16 degrees and a maximum of 28 degrees Celsius. If we talk about Bengaluru, Bengaluru had a fog or mist in the early morning. And the minimum temperature was expected to be 15 degrees and maximum will be around 27 degrees.
और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 5 जनवरी है, देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है।
So let's begin with the year 1671 when Chhatrapati Shivaji Maharaj's forces captured Salher Fort from the Mughals, marking a significant strategic victory in the Maratha-Mughal conflict.
1957 में आज के दिन केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम प्रभाव में आया।
In the year 1731, Moscow introduced street lighting for the first time. This marked a significant modernization of the city's infrastructure and preceded the later widespread adoption of electric lighting.
2006 में आज ही के दिन भारत और नेपाल ने पारगमन संधि की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ाया।
In the year 1971, the world's first ever one-day international, that is ODI cricket match, was played between Australia and England at the Melbourne Cricket Ground.
और 2014 में आज ही के दिन भारतीय संचार उपग्रह GSAT 14 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। GSAT 14 में भारत में निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल हुआ था।
And if we talk about the year 2005, the largest dwarf planet in the solar system, Eris, was discovered, which eventually led to the reclassification of Pluto. And if we talk about the year 2016, Indian teenager Pranav Dhanavar set a world record by becoming the first cricketer to score 1,009 runs in a single innings during a school match in Mumbai.
2020 में आज ही के दिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लियो कार्टर ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए। ये कीर्तिमान बनाकर विश्व के 7वें बल्लेबाज के रूप में उन्होंने क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। कार्टर के अलावा अब तक वेस्टइंडीज के गैरी सॉबर्स, भारत के रवि शास्त्री और युवराज सिंह, दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स, इंग्लैंड के रॉस विटाली और अफगानिस्तान के हजरतुल्ला जजई ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। और अब समय है उन विभूतियों को याद करने का जिनका आज जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। तो याद करते हैं सर मिर्जा मोहम्मद इस्माइल को, उनकी आज पुण्यतिथि है। उनका जन्म 23 अक्टूबर 1883 को हुआ था। वे सन 1908 में मैसूर के महाराजा के सहायक सचिव थे, जो कुछ समय बाद मैसूर के दीवान भी नियुक्त ही हुए। बंबई विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पद पर भी मिर्जा मोहम्मद इस्माइल ने कार्य किया था। लंदन में होने वाली पहली और दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वे शामिल हुए थे। मिर्जा मोहम्मद इस्माइल अमीन उल मुल्क भारत में शिक्षा संबंधी विषयों के शुभ चिंतकों में से एक थे। नागपुर, अलीगढ़, आगरा, बनारस, पटना, ढाका आदि विश्वविद्यालयों के दीक्षांत भाषणों से उनकी शिक्षा संबंधी योग्यता का पता चलता है।
And today is the birth anniversary of Diane Keaton, an American actress. Her career spanned more than 5 decades, during which she rose to prominence in the new Hollywood movement. Diane's accolades include an Academy Award, a BAFTA Award, and 2 Golden Globe Awards, along with nominations for 2 Emmy Awards and a Tony Award. And she has done multiple movies, be it Played Again Sam, and Lovers and Other Strangers, and multiple more. She was also there in The Godfather and the second part of Godfather as well. So we have a beautiful song by her. Let's just play that, titled First Christmas.
All the children build a snowman. Their laughter fills the whole land. Wrapping gifts around the fire. Yet I feel all alone. Hearing I'll be home for Christmas, it only makes me missin'. When you love someone for so, so long, yet they're not coming.
First Christmas, such a beautiful song. This is Diane Keaton's debut holiday song, a reflection on cherished memories and moments of the stories of her life. The song and video celebrate the joy and peace found in holding these memories close.
आज पुण्यतिथि है चितलकर रामचंद्र की। उनका जन्म 12 जनवरी 1918 को अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। वे न केवल संगीत निर्देशन की प्रतिभा से परिपूर्ण थे, अपितु उन्होंने अपनी गायकी, फिल्म निर्माण, निर्देशन और अभिनय से भी सीने प्रेमियों को अपना दीवाना बनाए रखा। फिल्म जगत में अन्ना साहब के नाम से मशहूर सी रामचंद्र से फिल्मों से जुड़ी कोई भी विधा अछूती नहीं रही थी। उन्होंने अपने संगीत निर्देशन और गायकी में भी खूब बारीकी से उकेरा था।
Yes, we are talking about C. Ramachandra, and we have multiple songs by him. So let's just play one of those.
Hey, mere vatan ke logo, zara aankh mein bhar lo paani, jo shaheed hue hain unki, zara yaad karo qurbaan, tum bhool na इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो
The highly popular patriotic song "Ae Mere Watan Ke Logo," which was sung by Lata Mangeshkar and penned by the poet Pradeep, was a composition of C. Ramachandra. It was later performed live by Lata Mangeshkar in the presence of former Prime Minister Jawaharlal Nehru at the National Stadium in New Delhi on Republic Day in 1963. And if we talk about Lata Mangeshkar only, on 27th of January 2014, Lata Mangeshkar was felicitated by the then Chief Minister of Gujarat, Narendra Modi, at Mumbai to commemorate the 51st anniversary of this particular song.
वर्ष 1953 में सी रामचंद्र ने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और न्यू साई प्रोडक्शन का निर्माण किया, जिसके बैनर तले उन्होंने झांझर, लहरें और दुनिया गोल है जैसी फिल्मों का निर्माण किया। आपकी मुख्य फिल्में शहनाई, समाधि, अलबेला, अनारकली, नास्तिक, आजाद, नवरंग, तीरंदाज, शतरंज, आशा, अमरदीप, शारदा आदि है। आइए सुनते हैं उनका एक और गीत।
देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।
आज पुण्यतिथि है बी एम श्री कांतैया की। उनका जन्म 3 जनवरी 1881 को तुरुवेकेर तालुक के संपिगे गांव में हुआ था। वे कन्नड़ कवि, निबंधकार, संपादक, अनुवादक, भाषाविद और शिक्षक थे।
And today is the birthday of Bradley Cooper, an American actor and filmmaker. He is the recipient of various accolades, be it British Academy Film Award and even 3 Grammy Awards. In addition, he has been nominated for 12 Academy Awards, 6 Golden Globe Awards and a Tony Award. So let's just hear one of the amazing songs from one of his films, A Star Is Born, titled Maybe It's Time.
Maybe it's time to let the old ways die. Maybe it's time to let the old ways die. Takes a lot to change a man. Hell, it takes a lot to try. Maybe it's time to let the old ways die. Nobody knows what ways for the dead.
आज पुण्यतिथि है रमेश बहल की। वे भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता थे। उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपकी मुख्य फिल्में द ट्रेन, कस्मे वादे, पुकार, जवानी, अपने अपने आदि हैं। आइए सुनते हैं उनके कुछ गीतों को और उनकी फिल्मों के संवाद।
काम बहुत खतरे का है।
रॉनी अपनी हर सांस के साथ खतरा पकड़ता है और हर सांस के साथ खतरा छोड़ता है।
जाती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है।
तुम्हें तो ये भी याद नहीं कभी हमने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, कई वादे किए थे, कई सपने देखे थे।
मुझसे भला ये काजल तेरा, मुझसे भला ये
सीता, तुम वो दिन भी भूल गई।
And today is the birthday of Lieutenant General Yogesh Kumar Joshi. He is the PVSM, UISM, AVSM, VRC, SM and ADC. Born on this particular day in 1962, is a retired General Officer of the Indian Army. He was the General Officer Commanding in Chief Northern Command, assuming office from Lieutenant General Ranbir Singh on 1st of February 2020. He last served as the Chief of Staff of the Northern Command, and previously he was the commander of Leh-based Fire and Fury Corps, and he's the only war-decorated army commander who has to his credit successes against both Indian adversaries, China and Pakistan.
आज जयंती है मोहम्मद उमर मुकरी की। उनका जन्म 5 जनवरी 1922 को उरण बॉम्बे महाराष्ट्र में हुआ था। वे लोकप्रिय रूप से मुकरी के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने हिंदी फिल्मों में हास्य अभिनेता के रूप में काम किया। उन्होंने 1945 में फिल्म प्रतिमा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जिसमें उनके साथ जाने माने फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार भी थे। वे स्कूल में साथ पढ़ते थे। इसके बाद 50 वर्षों के अपने करियर में उन्होंने 600 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। आइए नजर डालते हैं उनके अभिनय पर।
नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं?
सरकार, मैं तो आपके बगल में ही खड़ा हूँ।
नथुलाल जी, मुझे हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना।
ये तो आपका बड़प्पन है।
मेरा बड़प्पन है?
आ गया, आ गया, मेरा शेर, मेरा चैंपियन, मेरा मोहम्मद अली।
हाँ बोल, किसका थोबड़ा फोड़ने का है?
उस्ताद, आज का फाइट इतना इजी नहीं है। बाहर गांव से बहुत बड़ा बॉक्सर आएगा है, वो देख।
उस्ताद, अपन अपना बोरिया बिस्तरा बेच के पूरा 5,000 रुपया लाया है, तू बोल तो लगाता हूँ।
जो लगाना है लगा दे, देखा जाए।
अरे क्या बोल रहा है, अगर तू हार गया तो मैं लग जाऊंगा, पर पूरे 5,000 रुपये लगा रहा हूँ, जरा जम के लड़ना।
आज जयंती है बारिंद्र कुमार घोष की। उनका जन्म 5 जनवरी 1880 को हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा पत्रकार थे। इनको बारिन घोष के नाम से भी जाना जाता है। वे अध्यात्मवादी अरविंद घोष के छोटे भाई थे। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय बारिंद्र कुमार और स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्र नाथ दत्त को ही जाता है। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप बारिंद्र कुमार घोष ने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करने के लिए 1906 में बांग्ला साप्ताहिक युगांतर का प्रकाशन प्रारंभ किया।
And today is the birthday of Deepika Prakash Padukone, an Indian actress who works predominantly in Hindi films. Her accolades include 3 Filmfare Awards. She is the daughter of the badminton player Prakash Padukone, was born in Copenhagen and raised in Bangalore. As a teenager, she played badminton in national level championships but then left her career in the sport to become a fashion model. And before we go any further in the details, let's just hear a dialogue of hers from one of her most successful films, Piku.
तो तुम्हारे फादर कितने हैं अब? बाबा 70 के तो होंगे?
Exactly. You know my situation. You know वो मेरे ऊपर dependent है. सुनाई नहीं दे सकता ठीक से. आंखें कमजोर हैं. छोड़ दूँ अकेले? अपने आप कैसे संभालेंगे?
छोड़ने को मैं नहीं कह रहा. छोड़ा तो मैं भी नहीं अपनी माँ.
I hope you realize he's a selfish man.
No, he's not.
He is.
And even if he is, he's my father. क्योंकि राणा के एज के बाद पेरेंट्स अपने आप जिंदा नहीं रह पाते, उनको जिंदा रखना पड़ता है, और वो जिम्मेदारी बच्चों का ही है। तो अगर किसी को मुझे शादी करनी है तो
तुम्हारे 90 साल के बच्चे को अडॉप्ट करना पड़ेगा।
बिल्कुल।
You must have seen in multiple movies, be it Cocktail, Chennai Express, Om Shanti Om, and then Padmavat, Bajirao Mastani, Ram Leela, and she has also done some Hollywood action films as well. There's another song we have. When you think of this particular song, all you can think about is Deepika dancing flawlessly. So here comes the song.
Hey,
और अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है, तो अनुमति दीजिए कार्यक्रम आज सवेरे यहीं पर समाप्त करने की।
Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhata Hindi News Bulletin followed by Morning News in English at 8:15 AM. Thanks for tuning in. Have a superb day. Namaskar.